उनके अनुगत्य में अच्छी तरह से भजन नहीं करता। कुछ लोग ऐसे हैं शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रहने पर भी उनकी बात मानना नहीं चाहते, अपनी लगाते हैं। हमने जो समझ लिया मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं वैसा ही करूं। उत्पात जो अनुभव करने वाले भजन साधन करके उपलब्धि करने वाले उनके अनुगत्य में यदि भजन किया जाए तब तो भाई भजन होगा, और नहीं तो मनमाने ढंग से कभी कृष्ण को बेटा मान लिया और कभी कृष्ण को पिता मान लिया और कभी कृष्ण को अपना उपपति मान लिया, कभी द्वारका की पटरानी जैसी पति मान लिया। एक श्लोक में है ना, तमेव माता पिता च तमेव तमेव समय समय विद्या द्रविणं समेव समेव सर्वं मम देव। अभी संबंध कृष्ण से नहीं हुआ, गुरु संबंध एक दे देता है, उस संबंध के द्वारा एक अनन्य संबंध रहेगा। बस कृष्ण हमारे प्रियतम है, कृष्ण हमारे बेटे हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, इन संबंधों में आना। तब तो ये चीजों को समझ, वो भी वेणुगीत नहीं समझेंगे जब तक कि गोपियों के अनुगत्य में नहीं होंगे, गोपी नहीं होंगे, भाव नहीं होगा, गुरु इस संबंध को नहीं देंगे, नहीं होगा। एक महिला है, एक लड़की है और एक लड़का है। समाज की परवाह किए बिना किसी की बात नहीं मान करके बस बॉय फ्रेंड और बॉय गर्ल के रूप में संबंध करके एक साथ में रहने लगे। अब उनसे बच्चा पैदा हुआ, समाज मानेगा? अंततः अभी का समाज नहीं मानेगा, हमारे भाव का नहीं मानेगा, और देशों में भी नहीं मानते हैं। और वही विवाह हो जाने के बाद में पिता कन्या दान देने के बाद में पुरोहित ये कह देता है कि तुम इनकी पत्नी हो, तुम उनके, बस समाज के सामने बस एक वो मुहर लग गई। फिर यदि छोड़ेगा तो ऐसे अब छोड़ नहीं समझ सकता, वो दायित्व तो उस पर रहेगा, उसको फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा, समाज के सामने जाना पड़ेगा, सहजी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे, खुराक के पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देगा। ऐसे ही कृष्ण के साथ में एक संबंध होना चाहिए जो गुरु देता है। इसके बाद में ये चीजें समझेंगे, इसके बाद में समझेंगे दास्य भक्ति कैसी है। इसलिए भक्त लोग पांच प्रकार के माने गए। कौन कौन पांच प्रकार के? ज्ञानी भक्त पहला, दूसरा शुद्ध भक्त, तीसरे प्रेमी भक्त, चौथा प्रेम पर भक्त, पांचवा प्रेमासुर भक्त। ये पांच प्रकार संक्षेप में समझ लीजिए, तब भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब वेणुगीत को पीछे सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा संक्षेप में, किंतु कितने लोग समझेंगे ये मैं नहीं समझता। पहले इस चीज को समझिए, ज्ञानी भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, सोहम करते हैं, ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन निर्गुण अनादि अव्यक्त होता है, उसमें कोई गुण नहीं, मैं ब्रह्म हूं, नंबरी भगवत अपराधी चरणों में। तुम कहो अपने मैया से मैं वही पिता हूं अपना, तुम मेरी स्त्री हो, मैया को कहोगे? विचार करो, कोई कह रहा था अपनी मैया दुर्गा जी को या पार्वती जी को, मैया मैया मेरे ऊपर में कृपा करो, हे दुर्गे माँ, कहता है ना, और दो दिन के बाद में उसी दिन वो कहे शिवोहम, मैं शिव हूं। तो दुर्गा जी कह रहे तू अब मेरा पति बन गया, क्या करेंगे, खड़ग लेंगे और उसका गला काट। इसलिए वही मुंडमाला पहनती हैं, शिव हम मत बनो, शिव का दास बनो। इसलिए रावण इत्यादि जितने हैं सब मारे गए, उन्हीं की मुंडमाला पहनती हैं। इस चीज को समझो पहले, इसलिए सोहम उनके चरणों में अपराध, सोहम मत बनो। अभी दिल्ली के और यहाँ बम्बे में मैंने देखा सोहम आश्रम, सोहम चारों तरफ में लिखे हुए, खबरदार सोहम को बहुत दूर से प्रणाम करो, ऐसे जो व्यक्ति कहते हैं उनसे बहुत दूर रहो, सोहम मत बनो। भगवान निराकार नहीं है, मैंने कल ही बतलाया, कृष्ण और
राम इत्यादि सामने कह रहे हैं कि मैं पर ब्रह्म है, उनका रूप है। जब ब्रह्म रूप नहीं रख सकता है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, तो उसकी क्या जरूरत है, वो क्या कर सकता है, उसकी उपासना की इसलिए, इसलिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग ज्ञानी भक्त नहीं है। ज्ञानी है कौन? प्रहलाद महाराज। सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सब में और भगवान में सबको दर्शन करते हैं, सर्वत्र उनकी दृष्टि रहती है, ये सर्वत्र भगवान है। किंतु सभी भगवान है ऐसा नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पारी। इसका अर्थ लोग हम समझते हैं कि लाखों में से दो एक आदमी समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी ये नहीं लिखा, सिया राम माने क्या, ये जगत सिया राम से निकला है, सबके अंदर में सिया राम है। यदि सभी सिया राम है, सभी सिया राम ही ऐसा देखेंगे, तो हनुमान को भी सिया राम देखेंगे, रावण को भी सिया राम देखेंगे हनुमान जी, तो उनको मारा क्यों? विचार करो, यदि सभी सिया राम ही है, हनुमान जी इस चीज को देख रहे हैं, सभी सिया राम है, उनसे बढ़कर से कोई भक्त नहीं है, तो रावण ने क्यों नहीं देखा जैसे सिया राम है, तो उसको प्रणाम क्यों नहीं किया और कहते जी सीता जी को तुम रख लो बहुत, क्योंकि तुम ही तो राम हो, सीता जी को रख लो, उसे मारा क्यों, उसके लंका को क्यों नष्ट कर दिया? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं। जैसे पृथ्वी जलमय हो गई, बाढ़ आई, चारों तरफ पानी भर गया, क्या पेड़ पानी बन गया, क्या पत्थर पानी बन गया, क्या मिट्टी पानी बन गया? पानी की अधिकता से वहां पर सब जल मग्न हो गया। इसको जलमग्न न कह करके जलमय कह देते हैं। सिया राम में जिधर देखते हैं, अरे ये भी भगवान से निकला है, इसके अंदर में भी सीताराम है। लोटे देखते हैं, उसमें पानी है, पानी है सब में, तो इसलिए सब लोटे ही पानी हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा मत देखो। सब जगह सियाराम है, किंतु सभी कोई भी सियाराम नहीं है, सिया और राम ही राम है। दूसरी बात, सियाराम में तुम उनको देख लो, तो इसमें ये सीता जी है ना राम है, वो तो अलग अलग है ना खड़े हुए, तो उसको सीता देखेगा कि राम देखेगा, क्या देखेगा? ये सब विचार की, इसलिए सिया राम ने जिधर दृष्टि पड़ती है राम की स्फूर्ति होती है, सीता जी की स्फूर्ति होती है, इसलिए इसके सब अर्थ ऐसा होना चाहिए। इसलिए जो सिया राम सब जगत है, सो हम मैं ही वही हूं और वो भी वही है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये सब ये कहने वाला ऐसा होना चाहिए। उस स्थिति में पहुंच करके इसके अर्थ दूसरे, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि तुम उनके हो। आप बड़े पढ़े लिखे लेकिन मूर्ख इसका अर्थ लगा दे लेते हैं कि तुम भी वही हो, यह गलत अर्थ। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ज्ञानी भक्त हैं, सनत सनंदन सनत कुमार ज्ञानी भक्त हैं, इनसे बढ़कर के शुद्ध भक्त हैं कौन? अम्बरीश महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, सब समय भगवान का नाम करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, मन से चिंतन करते हैं, हाथों से मंदिर मार्जन करते हैं, मुख से भगवान की कथाओं का प्रचार करते हैं, पद से परिक्रमा करते हैं स्थानों की, हाथों से भगवान और भक्तों को स्पर्श करते हैं, ये सब शुद्ध भक्ति चले। इनसे भी बढ़कर के प्रेमी भक्त, प्रेम भक्त हनुमान जी दिन रात श्वास श्वास में भगवान की सेवा करते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते हैं। एक समय सीता जी स्नानागार में थी, स्नानागार में देर हो गई, मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई, खोजने लगे, खोजते खोजते ये भी स्नानागार में पहुंच गए। वो सिंदूर लगा रही थी, उसको देखा उन्होंने, मैया ये लाल बिंदी क्यों लगा रही है और यहाँ पर ऐसे? बेटा ये सुहाग का चिन्ह है, पति पति स्त्रियाँ ये सुहाग का चिन्ह धारण, इसलिए मैं सुहाग का चिन्ह, हमारे जो पति हैं वो दीर्घायु हों, बलवान हों, किसी से हारे नहीं, मेरा यह सुहाग कभी नष्ट न हो, इसलिए धारण कर। चुप हो गए। सीता जी निकल करके राम के पास में चले गई राजभवन में, और उस समय में हनुमान जी ने, जब सीता जी निकल गईं, तो जितना सुंदर था डीबी अमेश सिंदूर सबको लेकर के उसमें घोल करके और अपने चारों तरफ में अंगों में सब जगह लगा दिया और उसी स्थिति में राम के पास में और सीता जी के पास में पहुंचे जहां पर सभा बैठी थी राजसभा में। सब लोग देख करके हंसने, अरे ये क्या हनुमान आज किया। राम ने पूछा हंसते हुए, अरे आज तुमने ये कैसा रूप बनाया। मैंने देखा ये मैया हमारी यहाँ पर सिंदूर मांग में सिंदूर लगाती हैं, इससे सौभाग्यवती रहती हैं और रामचंद्र दीर्घायु और सुखी रहते हैं। तो मैंने सोचा ये राम दीर्घायु हो सुखी हो इसलिए सारे अंगों में लगा दिया। बतलाओ, बिना सेवा के रह नहीं सकते। यदि उनकी कोई सेवा बंद कर देना, सब एक बार भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और सीता जी मिल करके हनुमान जी की सेवा बंद कर दिए, दिन रात सेवा करता है, हम लोग को सेवा का सुयोग नहीं मिलता। सब लोगों ने मिल करके सारी सेवा उसकी बांट ली और हनुमान का इसे बाहर रख बहुत दिन सेवा की। हनुमान जी बड़े रोने की घी आए, हमको कोई सेवा दो ना तो मैं बच नहीं सकता। उन्होंने कहा जी अच्छा तो एक सेवा हमको दे दो कोई। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं, अच्छा तो मैं एक सेवा बार कर सकता। राम को तो कभी कभी जम्भाई आती है तो मैं चुटकी बजा दिया कर गई है सजाओ। उन्होंने देखा जैसे राम को कभी जम्भाई आती नहीं इसलिए चुटकी बजाता रहे तो कोई बात नहीं। वो बड़े प्रसन्न हो गए और चले आए। वो लोग सेवा कर रहे हैं, रात का समय सीता जी उनके पास में हैं और ये चुटकी बजा रहा है। राम को जम्भाई आने लगी, रात भर सोए नहीं केवल जम भाई आए और ये बजा रहा है सप्त में चुटकी। चारों तीनों भाई और सीता जी सवेरे आई, तुम चुटकी क्यों बजाता है, अब तो हमारे लिए और उसके अतिरिक्त सेवा नहीं, अब तो तुम जब उनको जम भाई आए तो बजाओ, तो मैं कब जानता हूँ जैसे ये इनको जम भाई आएगी इसलिए पहले से बजा रहा हूँ। तुम लोगों तो हमको जाने भी नहीं देते, उनके दर्शनों के लिए भी नहीं जाने देती, इसलिए कब जम भाई आएगी इसलिए मैं बजाता हूँ, जब कभी जम भाई आ जाएगी तो इसलिए। सब अंत में हनुमान जी के पास में आए, क्षमा मांगी और उनको पहले जैसी फिर सेवा दी। ये हनुमान जी प्रेमी भक्त, पीठ पर लेकर के चलते हैं, वाहन होते हैं, अपने उसे पूछ से परकोटा बना रहते हैं, क्या क्या नहीं सब उनकी कितनी सेवाएं हैं, उनका जैसा दूसरा कोई भक्त नहीं, ये प्रेमी भक्त है। किंतु हनुमान लगते हैं कि राम हमें कभी आलिंगन कर लेते, नहीं कर, अपना जूठा राम को खिलाएंगे। पांडवों के यहां जाओ, अर्जुन को देखो एक पलंग पर सोए हैं कृष्ण और अर्जुन, एक तरफ में अर्जुन का पैर है उस तरफ में कृष्ण का सिर है। कृष्ण ने अर्जुन के पैरों को अपने गोदी में ले रखा है और सहलाते सहलाते सो रहे हैं और अर्जुन कृष्ण के चरणों को अपनी छाती पर लिए हुए उसको सहला रहे हैं। कृष्ण के चरणों को सत्यभामा रुक्मिणी चमर और पंखे डुला रही हैं और इधर अर्जुन के पैरों की तरफ में द्रौपदी और सुभद्रा जी ये चमर डुला रहे हैं। अर्जुन के रोम रोम से निकला कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्जुन का रथ हाँकते हैं जानते हैं, कहते रथ ले चलो हमारे घोड़ों को धो लो। अरे सखा कभी कृष्ण ने उनको अपना बहनोई ही बना लिया, अर्जुन को अपनी बहन की शादी कर दी ना, इसलिए जूठे परस्पर खाते हैं, एक थाल में बैठ करके खाते हैं, एक पलंग पर सोते हैं। हनुमान जी कर सकता, प्रेमी होने पर भी नहीं कर सकता, जूठा नहीं खिला सकते, आलिंगन नहीं कर सकते, पलंग पर सो नहीं सकते और ये आदेश देते हैं उस कृष्ण को अपना सखा मान करके। देखो उसे बड़े हुए कि नहीं प्रेम में, इसलिए इनको प्रेम पर भक्त कहते हैं। किंतु इनका प्रेम भी छोटा पड़ जाता है किसके साथ, उद्धव के सामने। उद्धव उनके मंत्री हैं, सखा हैं, बंधु हैं, प्रियतम बंधु हैं। यदि ब्रज में किसी को भेजना पड़ा तो अर्जुन को भेजा, द्रौपदी को भेजा, किसको भेजा, उद्धव जी को भेजा। ये कुछ योग्य है, गोपियों का प्रेम समझ सकता है दूसरा नहीं। मैंने जिस पाठशाला में प्रेम की शिक्षा ली है उसी में ही उद्धव जाएगा, कुछ समझ पूछ करके पढ़ लिख करके आएगा तब उसे प्रेम की बातें करूंगा। गोपियां तो अपना विरह अपने सखियों में बांट देती हैं, मैं नहीं बांट सकता, मैं किसे कहूँ, मथुरा में कोई प्रेमी है ही नहीं है जिसमें प्रेम की बातें, गोपियों के प्रेम की बातें करूँ। राधा जी ऐसे प्रेम करती थी, उसका प्रेम का मैं ऋणी हूँ। मैंने अपनी बंसी और अपना मुकुट, मोर मुकुट राधा जी के चरणों में न्योछावर करके उनका दास बन गया। ये किसे कहूँ जो उनका प्रेम कितना ऊंचा है। इसलिए भेजा किसको, उद्धव जो परम ज्ञानी थे उनको भेजा, जाओ ब्रज की पाठशाला में तुम पढ़ाओ। जहाँ की पाठशाला में प्रिंसिपल राधिका जी हैं और अध्यापक कौन है, ललिता विशाखा इत्यादि। पहले ललिता विशाखा के स्कूल में गुरु ट्रेनिंग इत्यादि ये पढ़ो और तब फिर हमारे पास में आओ। उनको माता पिता को सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा, ये मत सोचिए। गोपियों की अथाह प्रेम को समझने के लिए, जगत के लिए मौका दिया। उद्धव जी गए और गोपियों के चरणों में नमस्कार करके बोले, ये प्रेमातुर भक्त कहलाते हैं। यहाँ तक तो भक्त, इसके बाद में भक्त नहीं परिकर हैं। राधा जी भक्त मत समझिए, श्रीदाम मधुमंगल इत्यादि भक्त नहीं है, जशोदा मैया भक्त नहीं है, ये साधन की कोठी में नहीं है, ये कृष्ण के परिकर हैं। कोई माता हैं, कोई पिता हैं, कोई सखा हैं, कोई बंधु हैं, कोई कृष्ण की आराध्या श्रीमती राधिका जी हैं। राधिका जी को ऐसे मत समझिए, कृष्ण की भी आराध्या है, कृष्ण ने आराधिता, इसलिए उनका नाम राधिका है, कृष्ण के द्वारा आराधित होती है, कृष्ण उनकी आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम राधिका राधा है। शास्त्रों में इसलिए सब बतलाए गए हैं, प्रेमी भक्त लोग ऐसा करते हैं। कृष्ण के हृदय में प्रेम है, गोपियों के हृदय में प्रेम है, किंतु किसका प्रेम अधिक है, गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। इसको समझने के बाद में वेणुगीत आरंभ हो, यहां से आरंभ होता है। इसलिए गोपियों की महिमा अनंत है, गोपियों की महिमा आप कृष्ण के विरह में कैसे तड़फड़ाती हैं, भाई जानना पड़ा था। तब ये चीज को समझेंगे, वेणुगीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत और गोपी गीत इत्यादि। अभी थोड़ा सा एक कीर्तन दो मिनट करो। उसे धमकाती हैं उस परब्रह्म को, नारद जैसे भक्त लोग आकर के देखते हैं, ओहो जसोदा तैने कौन से पुण्य किए, कौन से तीर्थों में स्नान किया, कौन सा तुमने तपस्या की, आज विश्व ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का ये प्रभु तुम्हारे यहाँ पर लाला बन करके तुम्हारी गोद में चढ़ने के लिए ललक रहा है। इसलिए पहले वात्सल्य रस को समझेंगे, तब फिर तब हम गोपियों के प्रेम को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते हैं। इसलिए संक्षेप में 10-15 मिनट में ये आ जाइए, हमारे रसानंद यहीं से बोलेगा, वहाँ पर बैठ जाओ। आज तो बस वात्सल्य भाव से कृष्ण की सेवा के संबंध में सुना। भगवान यशोदा मैया के प्रेम में बंध गए, यशोदा जी ने रस्सी से नहीं बांधा, अपने प्रेम से बांधा। भगवान का भक्त में प्रेम और भक्तों को भगवान में जो प्रेम होता है, भगवान के प्रेम से भक्तों का प्रेम बहुत अधिक यदि होगा तब तो बंधन में आएंगे। सखा लोग, अभी अर्जुन की बात कर रहा था, ब्रज के सखा लोग उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं, वो लोग भी कृष्ण को नहीं बांध सके जो यशोदा मैया ने बांधा। किंतु यहाँ पर एक और विचार करने की बात, यशोदा जी ने कृष्ण को पलंग पर सुला दिया रात में खिलाने पिलाने के बाद, थप थपी देकर के सुला रही हैं। कृष्ण सोचते हैं कि मैया सो जाए, किस लिए सो जाए, उनको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किससे मिलना है, गोपियों से। इसलिए यशोदा जी से छिपा करके भी उन गोपियों से मिलने जाते हैं, क्यों, यशोदा मैया से भी बहुत अधिक उन गोपियों में प्रेम है। यशोदा मैया का प्रेम नंद बाबा में बटा है, कृष्ण में भी बटा है, घर के काम काजों में बटा है, किंतु गोपियों का प्रेम अखंड है। गोपियों ने उनकी यद्यपि शादी हुई है, ये बहुत बहुत दूर की बात है, साधारण लोग समझते हैं कि उनकी दूसरी जगह शादी नहीं, दूसरी जगह में, ये कृष्ण की काय व्यू है, कृष्ण ही है गोपियों के रूप में, राधा जी के रूप में, ये साधक नहीं है गोपियां, उसमें बहुत से साधक लोग हैं, किंतु ये राधिका इत्यादि ललिता विशाखा ये स्वयं राधिका जी ही हैं। अपने प्रेम को जगत में दिखलाने के लिए वो बहुत सी गोपी के रूप में हैं। उनके एक एक गोपियाँ एक एक भाव है। तो कृष्ण नंद बाबा से, जसोदा मैया से, सखाओं से भी बचकर उनसे लुके छुपे गोपियों से मिलते हैं। क्यों? उनका प्रेम अखंड है। उन्होंने माता को छोड़ दिया है, पिता को छोड़ दिया है, पति को छोड़ दिया है, लोक धर्म को छोड़ दिया है, लज्जा को भी कृष्ण के लिए छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है। उनके लिए बस कृष्ण ही कृष्ण है। ऐसे गोपियों के प्रेम के लिए कृष्ण में चलते हैं। इसलिए गोपियों का प्रेम सत्यभामा रुक्मिणी की बात क्या, जसोदा मैया से भी बहुत अधिक है। इसलिए गोपियों से मिलना चाहते हैं। ये गोपियों का प्रेम बहुत प्रकार के हैं, जिसमें दो विशेष हैं। एक कहलाता है पूर्वराग, और इसके बाद में एक मिलन होता है। पूर्वराग माने क्या? गोवर्धन धारण तक कोई भी किशोरी गोपी कृष्ण से अभी नहीं मिली थी, बहुत छोटी छोटी उम्र की थी। कृष्ण भी 7 वर्ष के उम्र में गोवर्धन को धारण किया, किंतु कृष्ण दूध मक्खन खाने के वजह से और स्वयं ब्रह्म होकर नाते 8-10 वर्ष की उम्र में ही किशोर 15-14 वर्ष के जैसे लगते थे। और ये गोपियां भी ऐसे ही राधा जी 6-7 वर्ष की उम्र में ही 12-13 वर्ष की किशोरी जैसी दिखती। जिसमें 7 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, उस समय गोपियों की कितनी उम्र होगी? यदि 2-3 वर्ष भी कम हो गई तो उनकी उम्र 12.5-13-14 इससे अधिक ही नहीं। यदि कृष्ण की उम्र 15 वर्ष भी रख लें, 14 वर्ष भी रख लें, उस समय छोटी सी किशोरी गोपियां थी। आज पहली बार लोक लज्जा छोड़कर विपत्ति में सारा ब्रज, सारी गोपियां, गायें, ग्वाले सभी गोवर्धन के नीचे आए हैं, कृष्ण धारण किए हुए। ऊपर से वज्र चल रहा और मूसलाधार पानी बरस रहा, वज्र गिर रहे हैं, सब लोग डर के ठिठुर के मारे उसमें समाये हुए। आज गोपियों का पहली बार ये मौका मिला जे कृष्ण का दर्शन कर, कृष्ण का दर्शन कर, और गोवर्धन की तरफ में देख करके करें। गोवर्धन यदि नीचे गिरे तो अपनी आंखों से तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे, और अपनी आंखों के इशारे पर ही गोवर्धन को उन्होंने धारण कर दिया। कृष्ण ने जो गोवर्धन धारण किया बाएं अंगुली से किया ना, तात्पर्य क्या है? कृष्ण के बाएं तरफ श्रीमती राधिका जी हैं, और बिना शक्ति से उठ नहीं सकते, तो ये शक्ति कौन है? राधिका जी। इसलिए राधिका जी ने ही गोवर्धन को अपनी आंखों के इशारे पर ही रख रखा है। लोग देखते हैं कि कृष्ण ने उठाया, कृष्ण ने ही, उनकी शक्ति में। इस तरह से उस दिन प्रथम मिलन हुआ, और किंतु बातचीत तो हुई नहीं। क्यों? सास ससुर सभी लोग वहां पर हैं, नंद बाबा हैं, जसोदा है और सब है। बड़े प्रेम के साथ में देखा उन्होंने कृष्ण से, और कृष्ण का ऐश्वर्य देख, सौंदर्य देख करके, उनकी मधुर बंसी सुनकर एकदम अपने को दे दिया कृष्ण को, श्री कृष्ण को समर्पण। इसके बाद में गोवर्धन रख दिया गया और वो लोग अपने अपने घरों में गई। अब कृष्ण के विरह में एकदम तड़फड़ होने लगी, कृष्ण से कैसे मिले, अभी मिले नहीं हैं, उनसे बातचीत करें, उनकी सेवा करें। इसके लिए मिलने से पहले जो प्रेम होता है उसको पूर्वराग कहते हैं। जैसे एक बात समझिए, किसी एक सुंदर लड़की की, किशोरी की, किसी किशोर बालक से सगाई हुई, बातचीत पक्की हो गई, वर पक्ष को अंगूठी दे दिया गया और कन्या पक्ष को हार दे दिया गया, और शादी पूरी ठीक हो गई। 6 महीने के बाद में ये शादी हो गई, सगाई हो गई। सगाई होने के बाद में अब लड़की की शादी होनी है, और यदि उसने सुन लिया कि हमारे भावी पति बीमार हैं, उसके हृदय में कैसी भावना आई? उसके लिए चिंता करती है, सब समय उसी की चिंता होगी। भगवान बतलाओ तो कृष्ण स्वयं भगवान किशोर अवस्था में बड़े सुंदर रमणी, उनके लिए जो कृष्ण के लिए चिंता करती हैं गोपियां, कब? जब कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं, उस समय गोपियां घरों में बैठ करके अपनी अपनी सहेलियों के साथ में जो उनके सम भाव वाली गोपियां हैं, जैसे जैसे भाव हैं ऐसे गोपियां, एक एक दलों में नहीं, दस दस बीस बीस पचास दलों में एकत्रित होकर के गान करने लगती हैं। उसमें कृष्ण बजा रहे हैं बंसी, वन में यमुना के किनारे त्रिभंग ललित खड़े होकर कदम्ब वृक्ष के सहारे लेकर मधुर तान उन्होंने छोड़ दिया। उसमें ऐसे अव्यक्त ध्वनि निकली, सभी गोपियां समझ रहे हैं कि हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। और उस समय घर में तन्मय होकर के उनकी बंसी को सुन करके उनके अंदर में कैसी भावना आ रही है, और वे परस्पर बात कर रही हैं बंसी की प्रभाव की बात, कृष्ण के सौंदर्य की बात, कृष्ण के गुणों की बात, विशेष करके वेणु की बातों को, ये कृष्ण ऐसे वेणु बजाते हैं, ये वेणु नहीं बल्कि हमारी ये कोई शौत है, मानो है वेणु पुरुष पुल्लिंग, किंतु फिर भी उसको उसी रूप में देखती हैं, क्योंकि जाती रही भावना जैसी हरि मूरत देखा। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी इसके संबंध में संक्षेप में कुछ कहेंगे।